दी।
दौला पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 20।
ओम नमः सिद्धेन्द्र, ओम नमः सिद्धेन्द्र, ओम नमः सिद्धेन्द्र, ओम शुक्रात्मने नमः, नमो अरिहंतानं, नमो चीतानं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाऊणं, त्रिभुवन शिरसे हरे पवपयगब्बादुनिगते परं सिद्धे जीवठाणं समदिन गुणचूलियं वोचम्।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें प्रथम खंड जो जीवस्थान नामक है उसमें अपना विषय है चूलिका का, और ये छठवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 182 पर मांगे 182। यहाँ अपनी बात अभी जघन्य स्थिति बंद की चल रही है। कल बात थोड़ी संकलेश और विशुद्धि की आई थी। असाता के बंध योग्य परिणामों को संकलेश कहते हैं और साता के बंध योग्य परिणाम को विशुद्धि। जैसे साता का लगातार अधिक 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 बंद होता रहे, जिसको कहेंगे भुजाकार बंद, तो चार समय तक हो सकता है कंटिन्यूस। उसका अर्थ क्या है? तब कषाय की वृद्धि हो रही है, फिर भी साता का बंद हो रहा है। केवल कषाय की वृद्धि को ही संकलेश नहीं कहना, ये वहां से सिद्ध हो जाता है। उसकी चर्चा अपनी हो गई थी। अब यहाँ एक एक कर्म की कितनी जघन्य स्थिति बंद कितना हो सकता है उसकी यहाँ बात चल रही है। तो हम करेंगे यहाँ 3 नंबर का सूत्र 182 नंबर का पेज। पंचन्नम नानावर्णीयाणम, चतुन्नम दर्शनावर्णीयाणम, लोभ संजलनस्य पंचन्नम अंतरायाणम, जघन्नोठिबंधो अंतोन्मोक्तम। देखो जघन्य स्थिति बंद कब होगा? जहाँ विशुद्धि ज्यादा हो। तो हमने देखा ज्ञानावरण का बंद कब से कब तक, यानी कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता है, मालूम है आपको?
ज्ञानावरण 1 से 10।
तो विशुद्धि कहाँ ज्यादा होगी? 10वें में के 10वें
में।
तो जघन्य बंद कहाँ होगा? स्थिति बंद हो, जघन्य स्थिति बंद वहाँ पर। इतनी बात कर रहे तो ज्ञानावरण का भी, और यहाँ कितने दर्शनावरण कहे? 4, क्योंकि हमने बंद स्थान देखे थे दर्शनावरण के, पहले 2 गुण स्थानों में 9 का बंद स्थान, फिर 6 का है और आखिर के दूसरे भाग से लेकर 4 का। तो 4 का जघन्य स्थिति बंद है, जहाँ वो अंतिम बंद है वहाँ होगा। तो कहाँ होता है? तो 10वें गुण स्थान के लास्ट में जाए। ये समझ में आएगा? तीसरी बात,
हम लोग हमसे देखा ना कि जो अंतकोड़ा कोड़ी केंद्रीय को भी अंतकोड़ा कोड़ी बनता है,
अंतकोड़ा कोड़ी नहीं बनता, एक सागर बनता है।
एक सागर
पंचेंद्रियों को ही, यानी संघी पंचेंद्रियों को ही अंतकोड़ा तक मिनिमम बन देगा, वो नीचे के गुणस्थान इवन नुए राजों को। श्रेणी भी शुरुआत में भी तो अंतकोड़ा कोड़ी का ही बंद है, और ये कब है? उनको 10वें गुणस्थान में जाकर एक अंतर्मुख का हो गया, यानी इतना वो घटते घटते चला गया। तो 4 दर्शनावरण की बात है, 5 अंतराय वो भी पहले से 10वें तक बनते हैं, जघन्य स्थिति बंद यहाँ 10वें में होगा लास्ट में जाकर। अब मोहनीय में कौन सा लिया? तो लोक संज्वलन लिया। लोक संज्वलन का बंद कब होगा? 10वें में तो नहीं बनता है, क्योंकि सूक्ष्म लोक के उदय में फिर लोक नहीं बनेगा, तो 9वें के अंत में बनता है। वो कितना बन रहा है? तो अंतर्मूर्त का बनता है। तो इन 4 का जघन्य स्थिति बंद कितना है? तो अंतर्मूर्त बता दिया। ज्ञानावरणीय दर्शन चक्षु दर्शनावरणादि 4 दर्शनावरण लोक संज्वलन और 5 अंतराय, इन कर्मों का जघन्य स्थितिबंध अंतर्मूर्त है। क्योंकि की कषायों के क्षपण करने वाले जीव थे, यानी क्षपक सेने वाली बात, अपने अंतिम बंद समय में, अंतिम बंद समय में दसों गुण स्थान भी अंतर्मुर्त है, उसमें भी स्थिति बंद करते करते लास्ट में जाकर वो जघन्य में जघन्य स्थिति बंद होता है। इस जघन्य स्थिति का बंद होता है यहाँ पर, अर्थात इस जघन्य स्थिति में गुणहानियां नहीं होती। क्यों गुणहानि? क्योंकि गुणहानियां कब होगी? जो एक गुणहानि, दो गुणहानि, तीन गुणहानि होगी, तो जो पहले के असंख्या पे भाग प्रमाण तो एक गुणहानि का प्रमाण है, और यहाँ तो मात्र अंतर्मूर्त है, तो इसमें कैसी गुणहानियां होगी? बस एक अंतर्मूर्त प्रमाण स्थितियां बनती है, क्योंकि पल्लवगुण के असंख्यात विभाग मात्र स्थिति के बिना गुणहानि का होना असंभव है। अंतर्मूर्तम आवादा, यानी स्थितिबंद भी अंतर्मूर्त, और उसके भी छोटा वाला वो अंतर्मूर्त होगा, वो उसकी आवादा होगी। पूर्व सूत्रोक्त ज्ञानावरणादि पंद्रह कर्मों का, ये पंद्रह कर्म गिनाएंगे,
पांच ज्ञानावरण, चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, नौ पांच अंतराय और लोक संयोग।
तो कहते इनका जघन्य आबादा का अंतर मुख्य है। पल्लवों के असंख्या प्रथम वर्गों मात्र शंका पूछ रहे हैं, यहाँ क्या कहा? जघन्य आबादा भी अंतर्मूर्त है, फिर शंका इस पर चल रही है। पल्लवों के असंख्या प्रथम वर्गमूल, उसका अर्थ है पल्ल का असंख्या का भाग। आबादा कांडक से, आबादा कांडक का अर्थ क्या है? अनेक स्थितियों के लिए उतनी की उतनी आबादा होती है। विवक्षित स्थिति में भाग देने पर आबादा आ जाती है, यानी स्थिति डिवाइडेड बाय आबादा कांडक इज इक्वल टू आबादा, क्योंकि हमने स्थिति डिवाइडेड बाय आबादा इज इक्वल टू आबादा कांडक देखा था, तो उसको भाग देगी तो वो आ जाएगी बात। यह बात पहले अनेक बार प्रलोपण की गई है। आवाज कुछ गूंज रही है, कोई आवाज कम करना। यह बात पहले कम करना, यह बात पहले अनेक बार प्ररूपण की गई है। अब आबाधा कांडक से असंख्यात गुणित हीन अंतर्मूर्त मात्र स्थिति की आबाधा कैसे उपलब्ध होती है? क्योंकि उसको भाग तो नहीं जा सकता, वो तो अंतर्मूर्त कहाँ, और वो तो आबाधा कांडक तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि अपनी अपनी जातियों में प्रतिबद्ध आबाधा कांडकों के द्वारा अपनी अपनी स्थितियों के अपवर्तित करने पर अपनी अपनी अर्थात विवक्षित प्रकृतियों की आबाधा उत्पन्न होती है। अलग अलग जाति वाली प्रकृति हमने देखी कि ज्ञानावरण की अलग, नित्यात्व की अलग वगैरह, तथा सर्व जाति वाली प्रकृतियों में आबाधा कांडकों के सदृशता नहीं होती, क्योंकि संख्यात वर्ष वाले स्थिति बंधों में अंतर्मूर्त मात्र आबाधा से अपवर्तन करने पर संख्यात समय मात्र आबाधा कांडक उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं। इसलिए संख्यात रूपों से जघन्य स्थिति में भाग देने पर, जैसे संख्यात रूप है ना, मान लेते हैं ना अंतर्मूर्त प्रमाण जघन्य स्थिति है, उसको दस से भाग दे दो तो दसवां प्रमाण वो अंतर्मूर्त उसकी आबाधा होगी।
अंतर्मूर्त का प्रमाण सब जगह पर अलग अलग है,
अलग अलग होगा। निषेध स्थिति से संख्यात गुणितहीन संख्यात आवली मात्र जघन्य आबाधा होती है, वो भी संख्यात आवली। यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो बात नीचे के गुणस्थानों में होगी वो वहां पर नहीं होती, क्योंकि वहां तो अंतर्मूर्त मात्र स्थिति का बनी, वहां आबाधा कांडक भी संख्यात समय का होगा। अब 184 पेज पर आते हैं। आबाधुनिया कम्मटिरी कम्मनिषेव, पूर्व सूत्रोक्त ज्ञानावरणादि पंद्रह कर्मों के आबाधा काल से हीन जघन्य कर्म स्थिति प्रमाण उनका कर्म निषेध होता है। यह सूत्र सुगम है। यहाँ पे जो नया बंध, नया समय प्रबद्ध बंधा, वो तो कितना छोटा अंतर्मुख प्रमाण बंध हुआ और उससे भी छोटा उसका आबाधा है। आगे देखते हैं, पंच दंशना वर्णीय असादा वेदनीयाणम जहन्नगो ठिलिबंधो सागरोमस तिन्नि सप्त भागा फलिदोमस असंख्यजति भागेन उनया। देखो अभी क्या किसकी किसकी बात चल रही। देखो पांच दर्शनावर्णीय, कौन से पांच दर्शनावर्णीय हो गई है? असाता वेदनी। अभी निद्रा संबंधी अगर संगी पंचेंद्रिय बंद करेगा तो कहाँ करेगा? पहले गुण स्थानों में बनती है तो उसका जगन्य कब होगा? संगी पंचेंद्रिय तो अंत कोड़ा कोड़ी जब समय तो किसान तब। तो यहाँ क्या कहा उन्होंने, एक सागर के तीन सप्तमांश भाग, उसमें से भी वो कुछ कम कर दो क्योंकि इनका जगन्य स्थिति बंद एक केंद्रीय को। ज्ञानावरण आदि का अंतर्मूर्त वो दसवें गुण स्थान है, वहाँ ये बनती नहीं है।
तो ऐसा लगे ना अप्रशस्त का एक केंद्रीय ज्यादा करेंगे ऐसा रहेगा
अप्रशस्त। हाँ अभी यानी कौन सी कहाँ बनती है उसको थोड़ा सोचना चाहिए। वैसे लेना क्योंकि जो बंद चित्ती करके ऊपर के गुण स्थानों में गए हैं वो तो उनकी अपेक्षा से एक इंद्रिय जीव उसका जगन्य करेगा। अब एक इंद्रियो में क्या रेशियो क्या प्रमाण होता है? तो मिथ्यात्व का बंध है एक सागर, उसके प्रपोर्शन में जहाँ सत्तर कोड़ा कोड़ी पंचेंद्रिय करता है तो पंचेंद्रिय तीस कोड़ा कोड़ी ज्ञानावरण करता है। तो जहाँ एक सागर होगा तो उनका कितना होगा? तो तीन सप्तम, तीस बटे सत्तर यानी तीन सप्तमांश सागर।
तीस की वजह
देखो पंचेंद्रियो में उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है?
किसका?
मिथ्यात्व का,
मिथ्यात्व का
सत्तर और ज्ञानावरण का तीस कोड़ा कोड़ी। अब एक इंद्रिय जो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना करता है? एक सागर। उस वो एक सागर के प्रपोर्शन में वो ज्ञानावरण आदि कितना होगा? सत्तर के लिए तीस यानी सात के लिए तीस, तो एक के लिए कितने? तो तीन सप्तम, यानी तीस बटे सत्तर यानी तीन सप्तम।
ज्ञानावरण का बंध
ज्ञानावरण जिस जिसका हमने तीस कोड़ा कोड़ी देखा था वो तीन सप्तम
होगा। तीन सप्तमांश क्या है आगे? सात सागर,
तीन सप्तमांश
सागर,
ये तो कोड़ा कोड़ी सागर थे।
ओके
पर प्रपोर्शन वही रहा ना, सत्तर कोड़ा कोड़ी के लिए तीस कोड़ा कोड़ी, तो एक सागर के लिए कितना? तीन सप्तमांश सागर। वैसे नाम कर्म में जहाँ बीस कोड़ा कोड़ी होते वहाँ दो सप्तमांश कहेंगे, ये तो कषायम के लिए चार सप्तमांश कहेंगे, अन्य जो पुस्तक वेद वगैरह है उसके नपुंसक वेद के लिए उतना कहेंगे। पुरुष वेद का क्या? आठ साल। क्यों? क्योंकि पुरुष वेद ऊपर के गुण स्थानों में बनता है जब उसकी बंदे उच्चिंगी होती है। कहा? नवे गुण स्थान में, वहाँ उसका जगन्य स्थिति बंद होगा।
हम लोग यहाँ पे उत्कृष्ट देख रहे हैं ना सब,
ये जगन्य में इसी में से ये इनके उत्कृष्ट है। इसी में से कितना कम करना? तीन सप्तमांश माइनस पल्य का असंख्यात्व अभाव। यानी वो सागरों में ही होगा ना, तीन सप्तमांश सागर यानी सागर का संख्या तो अभाग ही हो गया। इन रेंज बहुत कम है, मिनिमम कितना सागर यानी इतना माइनस पल्ले का संख्या, मैक्सिमम कितना? तीन सप्तमांश, इतनी उनकी रेंज है। तो ये उनका मिनिमम है, उनका मैक्सिमम, हमें सबसे मिनिमम कौन सा ये कौन कर रहा है? एक यानी जो समय दृष्टि के ऊपर नहीं बनती है प्रकृतियां, ऐसी प्रकृतियों के लिए हमें एक केंद्रियों की बात देखनी पड़ेगी। आप कहेंगे असातवेनी समय दृष्टि बांधता है, कौन कहाँ तो बांधता है? छठे छठे में बंध कितना है? अंत कोड़ा कोड़ी। तो अभी उसके लिए कहाँ देखेंगे हम? एक केंद्रीय बेने नहीं बात। देखो फिर ये सूत्र पढ़ती हूँ प्राकृत में से, पंचदंशनावरणीय असादा वेदनीयाणम यानी पांच निद्रा रसाता वेदी जहन्नगो ठिलिबंधो सागरोमस तिन्नि सप्तभागा। तीन सप्तमांश क्यों लेना? क्योंकि ये कौन सी प्रकृति है? दर्शनावरण की जो तीस कोड़ा कोड़ी वाली है, और असावेदिनी की भी असाता वेदनी की भी तीस कोड़ा कोड़ी स्थिति हमने देखी, उस प्रपोर्शन में तीन सप्तमांश सागर कहना। वो तो एकेंद्रिय उनके लिए उत्कृष्ट हुआ, हमें तो जगन्य में जगन्य चाहिए। तो एकेंद्रिय से के लिए उसमें से पल्ले का असंख्यात भाग कम करना, यहाँ तक बात ख्याल में, अभी आगे बढ़ेंगे। तीन सत्य भागा पलिदो वमस असंख्य यदि भागे न ऊणया, उसका हिंदी अर्थ देखते नीचे देखो। निद्रा निद्रादि पांच दर्शनावर्णीय और असाता विधिनीय, इन कर्म प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध, पल्योपम के असंख्यातवे भाग से ही सागरोपम के तीन बटे सात भाग प्रमाण है। हमारी भाषा में कैसा लिखेंगे, तीन सप्तमांश सागर माइनस पल्ले का असंख्यात भाग, क्योंकि समझाते समय वो इस तरह से विस्तार से लिखना पड़ेगा उनको। हम ऐसा लिखेंगे तीन सप्तमांश सागर माइनस पल्ले का असंख्यात भाग, ये उसकी जगन्य स्थिति है। यह इस प्रकार है, यहाँ पर अर्थात एकेंद्रिय जीव में सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम के स्थिति बंध वाले मिथ्यात्व कर्म का यदि एक सागरोपम मात्र स्थिति बंध होता है, प्राप्त होता है, उत्कृष्ट स्थिति बंध प्राप्त होता है, तो तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम मात्र उत्कृष्ट स्थिति बंध वाले दर्शनावरणी आदि कर्मों का क्या स्थिति बंध प्राप्त होगा। हमने सत्तर का तीस का प्रपोर्शन निकाला था, उन्होंने इस तरह से लिया, जहाँ सत्तर होता है वहाँ एक सागर, तो तीस के लिए कितना होगा, बात तो वही होगी, वैसा ही त्रैराशक दूसरी भाषा में। इस प्रकार इच्छा राशि को अभी इच्छा राशि फल राशि समझते ये त्रैराशिक है, तो इसमें क्या क्या है, तो ये तो हमारी प्रमाण राशि, इसको जो पहले लिखते हैं उसको प्रमाण राशि कहते हैं, और ये उसका फल बताए, सत्तर के लिए एक, और इच्छा हमें इसके लिए निकालना है, तो हमारी इच्छा राशि क्या है, ये तीस, तो क्या करना, इच्छा राशि से फल राशि को गुणा करना और प्रमाण राशि से भाग देना, तो हमें क्या मिलेगा, वो लब्ध राशि मिल जाएगी। यानी कि ना इच्छा राशि को फल राशि से गुणित कर प्रमाण राशि से अपवर्तन करना है, भाग देना। हम तो स्कूल में ऐसे सीखे थे कि नहीं, क्या कहते हैं, एक आम के लिए अभी कितने रुपए का लाएंगे, 50 रुपए, तो पांच आम के लिए कितने लगेंगे, क्या करते हैं हम, क्योंकि हमने पांच को 50 से गुणा किया और एक से भाग दिया तो 250 आ गए ना, ऐसे ही वहां पर किया, उसको नाम दिया ये इच्छा राशि है, ये फल राशि है और ये प्रमाण राशि है।
माइनस पर लेकर असंख्या तो भाग करते, मीनिंग ये जघन्य हो गया इसके लिए,
ये उसका जघन्य, यानी एक दिन नियम की रेंज कितनी है, उत्कृष्ट
तीन सप्तम,
तीन सप्तम सागर किसके लिए, वो उनके जो ज्ञानावरणादि सबके लिए, जो जो तीस वाले थे उन सबके लिए, उनके ये उत्कृष्ट है, ये उनका उत्कृष्ट, उनका जघन्य कितना है, तीन सप्तम सागर माइनस पल्ले का असंख्या तो भाग के, ये असंख्या की साइन, यानी इतनी उनकी रेंज है, यानी उनके स्थिति बनने के कितने वेरिएशन होंगे, जगन्य से पल्ले के असंख्या के भाग प्रमाण उनके वेरिएशन, और संगीत पंचेंद्रियों में वेरिएशन कितने, अंत कोड़ा कोड़ी सागर से लेकर सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर और इसमें तीस कोड़ा कोड़ी सागर ज्ञानावरण मेन बात है। तो जो प्रकृतियां ऊपर के गुणस्थानों में नहीं बनती है तो उसके लिए हम एक इंद्रियों में जगन्य कहेंगे, तो उनमें ये प्रपोर्शन है, मिथ्यात्व के लिए एक सागर, इस कोड़ा कोड़ी वाली प्रकृति होंगी जिसको तीसीय प्रकृति कहते हैं, वो तीन सप्तमांश, बीसीय में
दो सप्तमांश,
ये प्रपोर्शन है। अब आसान लगेगा हमको, क्योंकि हमें सोचना है ना, देखो हमने क्या देखा, ज्ञानावरण चार दर्शन, सभी ज्ञानावरण लेगा, दर्शनावरण में से चार ही लिए,
आगे भी लिया ना,
दर्शनावरण की चार ही
लिए,
और फिर अंतराय की पांचों पांच। और लोक का एक दिन वो ऊपर एकदम लास्ट में बनती है, तो उनका अंतर्मूल प्रमाण से भी बन रहे। अभी यहाँ जो देख रहे हैं पांच निद्रा और असाता वेदी जो तीसरी वाली प्रकृति है, उसका जगन्य कौन करेगा, तो एक
इंद्रिय,
तो एक इंद्रिय में जो एक इंद्रिय का जो उसका उत्कृष्ट है उसमें से पल्ले का संख्या का भक्त कर, तो उनका जगन्य होगा, अभी पढ़ेंगे हम। सूत्र के नीचे का पैराग्राफ हम पढ़ते थे, उसके प्रमाण राशि से अपवर्तन करने पर एक सागरोपम के सात भागों में से तीन भाग आते हैं। अपनी भाषा में तीन सप्तमांश सागर या तीन बटे सात सागर। पुनः उसमें एक रूप से अधिक, एक रूप है एक संख्या मिला दो, आवली के असंख्यात तो भाग मात्र आबाधा स्थान विशेष के द्वारा एक आबाधा कांडक को गुणा करके और उसमें से एक कम करके प्राप्त हुए विचार स्थानों को, विचार यानी पलटना, उक्त राशि में से घटाने पर जघन्य सिकेबंध होता है। पहले उन्होंने तीन सप्तमांश निकाल के बताया, तीन सप्तमांश सागर बताया, अभी उसमें से विचार स्थान यानी पलटने के स्थान कितने कितने होते हैं उसकी बात यहां बताया। तो ये हमने देखे विचार स्थानों को कैसे, हमने 150 पेज पर ये लिखा था। देखो विचार स्थान यानी पलटने के स्थान, हमने वहां 64 उत्कृष्ट स्थिति देखी थी और आबाधा के भेद 5 देखे, क्योंकि एक कांडक के लिए एक आबाधा, दूसरे कांडक के लिए दूसरे, ऐसे 5 कांडक थे तो 5 अलग अलग आबाधा के भेद थे, तो आबाधा कांडक मल्टीप्लाइड बाय आबाधा के भेद 20 हुए थे, उसमें से एक कम करो तो 19 विचार स्थान हुए थे। अब इन 19 को विचार स्थानों को उत्कृष्ट स्थिति में से घटाने पर जघन्य स्थिति प्राप्त होती है, ये हमने वहां देखा था, यही बात अभी हमने पढ़ी, फिर देखते हैं इसको। 184 लास्ट पैराग्राफ, लास्ट दो लाइन, पुनः उसमें एक रूप से अधिक आवली के असंख्यात भाग मात्र आबाधा स्थान विशेष के द्वारा, आबाधा स्थान वहां जो हमने 64 वाले में 5 आबाधा स्थान अलग अलग देखे थे, एक एक समय के डिफरेंस के आबाधा जुदे जुदे, तो यहाँ कितने होते हैं वो आवली के असंख्यात भाग प्रमाण, यहाँ स्थितियों के भेद कितने हैं टोटल पल्ले के असंख्यात भाग, उतनी उनकी रेंज है, उसमें जुदे जुदे आबाधा कितने हो गए आवली के असंख्यात भाग में, ये बात समझ में। तो उससे आबाधा कांडक को गुणा करके, अभी हमने देखा था ना यहाँ पर एक आबाधा कांडक, आबाधा कांडक 4 का था और उससे आबाधा स्थानों से उसको गुणा कर दिया, आबाधा कांडक 4 था, आबाधा के स्थान 5 थे, 20 हो गए थे, आबाधा कांडक को गुणा करके उसमें से एक कम कर प्राप्त हुए विचार स्थानों, ये विचार स्थान अलग अलग जुदे जुदे भेद उसकी स्थितियों के, उक्त राशि में से घटाने पर जघन्य स्थिति बंद होता है, ये समझ में, पृष्ठ में मालूम है, आबाधा कांडक मालूम है, आबाधा के भेद मालूम है, तो हमें जघन्य स्थिति का भी निकाल सकते हैं, जघन्य स्थिति बंद मालूम होगा तो उत्कृष्ण में से जघन्य को घटाएंगे वगैरह वगैरह सब करेंगे, एक ऐड करेंगे। उदाहरण, ये वही उदाहरण दे रहे हैं, मान लो उत्कृष्ट स्थिति 64 आबाधा 16, जो वहां उदाहरण लिया था ना वही है यहाँ पर, आबाधा कांडक कैसे निकालते, उत्कृष्ट स्थिति को उत्कृष्ट आबाधा से भाग देते तो 4 मिला आबाधा कांडक का प्रमाण, यानी 4 जुदी जुदी स्थितियों के लिए उतनी की उतने आबाधा होती है, आबाधा के स्थानों का विशेष 4। देखो उत्कृष्ट स्थिति चूल्हे का सूत्र 5 की टीका, अतएव जघन्य स्थिति होगी 4+1 × 4, आबाधा के स्थानों का विशेष यानी उत्कृष्ट आबाधा माइनस जघन्य आबाधा उसके उसके विशेष है, आबाधा के टोटल भेद कितने होगी 5 होंगे, विशेष यानी डिफरेंस, डिफरेंस किसमें निकालेंगे, उत्कृष्ट में से जघन्य माइनस करो तो उसमें एक प्लस करो तो टोटल हमें भेद मिलेगी, जैसे उत्कृष्ट है 15 और जघन्य है 5 तो भेद कितने हो गए, 15 में से 5 कम करो, पर हमको 5 को भी गिनना है 15 को भी गिनना है तो 11 हो गई ना। तो क्या करते हैं 15 माइनस 5 प्लस रखना, ये डायरेक्ट बात उसके आती है, ख्याल में आती बात। तो 4 प्लस 1 इंटू 4, ये पूरे को एक स्क्वायर ब्रैकेट करके फिर माइनस 1 करना, तो 19 विचार स्थान होते हैं। अब जो उत्कृष्ट स्थिति 64 में से 19 माइनस करेंगे तो 45 जगन्य स्थिति बंध का प्रमाण आता है, जो हमारे उस गणित में भी हमने देखा ऐसा ही था। शेष सूत्रार्थ सुगम इसी 185 पेज पर अभी हम नया सूत्र देख रहे हैं, 7 नंबर का अंतोमोत्तम आवाधान। यानी अभी हमने 3 सप्तमांश सागर माइनस पल्ले का असंख्या के भाग जितना उनका स्थिति बंध है तो आबादा अंतर्मोहित हो। पूर्व सूत्रोक्त निद्रा निद्रादि 6 कर्म प्रकृतियों का जघन्य आबाधा काल अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट स्थिति के साथ उत्कृष्ट आबादा बताइए, यहाँ जघन्य स्थिति के साथ आबादा भी जघन्य होगी नेचुरली। वह इस प्रकार है, एक आबादा कांडक के द्वारा एक समय कम जघन्य स्थिति में भाग देने पर जो राशि लब्ध हो उसमें एक जोड़ने पर जघन्य आबादा होती है। देखो कैसे, ये वही उदाहरण बता रहे हैं। मान लो जघन्य स्थिति 45 है, ऊपर क्या बताया, एक आबादा कांडक के द्वारा एक समय कम जघन्य स्थिति में भाग देने, तो एक समय उसमें आबादा कांडक हमारा 4 है, इसलिए जघन्य स्थिति 45 थी उसमें से एक कम करो तो 44 आ जाती है, उसके 4 से भाग देंगे तो 11 आ जाएगी प्लस 1। ये जघन्य 15 ये 12 ये
प्लस 1 क्यों किया, प्लस 1 ऊपर की तरफ से किया,
प्लस 1 इसलिए किया कि वो तो हमने क्या किया है, जघन्य स्थिति देखी फिर से, एक आबादा कांडक के द्वारा एक समय कम जघन्य स्थिति में भाग देने का। देखो हमारी कांडक का प्रमाण कैसे आता था, उत्कृष्ट स्थिति में से
डिवाइडेड बाय आबादा,
आबादा जैसे हमने यहाँ 64 को 16 से भाग दिया, परंतु 16 ये आबाधा 64 के लिए भी है, 63 के लिए भी है, 62 के लिए भी है, 61 के लिए भी, तो हमें 61 के लिए 16 मालूम है तो 61 का प्रमाण निकालना है, वो कैसे आ सकता है, उसके लिए उसके नीचे का कांडक ले लेंगे एक समय कम वाला, यानी 60 का लेंगे, 60 का लेंगे और उसको कांडक से भाग देंगे तो कितने आ गए,
60 डिवाइडेड बाय 16
चार 15 आ गए, तो 15 में एक मिला दो तो 16 आ जाएंगे,
16
समझ में आई बात। देखो ये इन्होंने क्यों ऐसा उठपटा किया, उत्कृष्ट कांडक की बात देखो, उत्कृष्ट स्थिति 64 समय थी, 64 समय के लिए 16 आबादा, 63 के लिए भी उतनी थी, 62 के लिए भी उतनी थी, 61 के लिए उसके लिए 16 है। अभी हम जघन्य की तरफ देखते हैं, जघन्य जो हमारे 45 है उसके ऊपर 46, उसके ऊपर 47, उसके ऊपर 48, इन सब के लिए आबादा सेम होगी, तो 48 को तो हम डायरेक्ट 12 से भाग देते तो ये तो कांडक का प्रमाण बरोबर, या कांडक से भाग देते तो 12 आ जाएगी, पर 45 की कैसे निकालना, तो 45 तक तो एक कांडक है क्योंकि ये जघन्य है ना, तो जघन्य में कांडक पूरा होता है, तो हम उसके नीचे की स्थिति का निकाल सकते हैं,
44 वाला
नहीं, कोई भी कांडक का उत्कृष्ट है उसको कांडक, देखो एक कांडक है 48 से 45 तक, उसमें 4 या आबादा कांडक का प्रमाण है 4, इससे 4 का भाग देते तो 12 यहाँ आ जाएंगे, यहाँ इसको 16 से 4 का भाग दिया तो 16 हो जाएंगे, तो हमें 45 तक उस प्रपोर्शन में नहीं आता, परंतु इसमें एक समय कम कर दो तो नया कांडक चालू हो जाएगा, वो नए कांडक का उत्कृष्ट कहलाएगा, इसलिए 44 का डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 11 आ जाएगा,
हाँ।
हमें इसका चाहिए ऊपर एक समय, तो उसमें भी एक समय बढ़ा दो तो 12 आ जाएगा। ये क्यों ऐसा सूत्र बनाया, समझ में आई बात, अभी जघन्य की ओर है, किसी भी कांड का उत्कृष्ट है उसको आबादा से भाग देते हैं, उसको कांडक से भाग देते हैं तो आबादा आ जाए, इसलिए इसके नीचे के कांडक का उन्होंने निकाला उसी रेशियो में,
तो उसका
और उसमें एक ऐड कर दो आवाज में तो गगन में आवाज मिल जाए। देखो फिर से उदाहरण मान लो जगन ने सीखी 45 आवाधा खंडक चार है, 45 से चार से नहीं भाग दे सकते क्योंकि वो कांडक जो चार है तो हम ऐसा कर सकते हैं कांडक चार है तो 45, 40, 47, 48 तक पहुंचो और बाद में कांडक से भाग दो तो हमें डायरेक्ट 12 का उत्तर मिल सकता है। कांडक प्रमाण ऊपर चढ़ के फिर भाग दो, उसके बदले हमने क्या किया नीचे के कांडक में चले गए, वहां है नहीं कोई इससे नीचे हिसाब निकालना है तो 45 में से एक कम कर दिया और उसको चार से भाग दिया, 11 आ गए उसमें एक मिला दिया तो 12 ये जगन ने आबादा है। क्यों किया वो हम बाद में सोच सकते हैं ना कि ऐसा क्यों किया होगा, पहले तो मालूम नहीं ना ऐसा क्या किया क्यों किया क्या, पर तो हम सोच तो सकते ऐसा क्यों किया होगा तो ये उसका कारण है। शंका जगन्य स्थिति को एक समय कम करके उसमें आबादा कांडक के द्वारा भाग किस लिए देते हैं, समाधान नहीं क्योंकि पहले एक समय कम आबाधा कांडक के बिना जगन्यता मानी गई है। हाँ हमने आपको नहीं बताया ये कनेक्शन पुराने पुस्तकों में देखो ये 45-1 उसके बीच में डिवाइडेड चिन्ह डालना है और चार और इस पूरे को एक स्क्वायर ब्रैकेट करना उसमें 1+ का ये किया होगा उसके अंदर। देखो देखो आप पुराने पुस्तक है ना 45-1 है ना आगे चार लिखा है दोनों के बीच डिवाइडेड बाय साइन भागा कर की साइन और ये सबको एक स्क्वायर ब्रैकेट करना
प्लस 1
क्योंकि भाग देने के बाद 1+ करना है नहीं तो क्या करना पड़ेगा 4+1 हो जाएगा। 4+1 करके भाग नहीं देना आज पहले भाग देके फिर बाद में 1+ करना वैल्यू बदल जाती है उसमें
+1 को बाहर रखना
है। हाँ +1 को बाहर रखना है। अभी आगे बढ़ते हैं आभा दुनिया कम्मठिरी कम्म निश्चय पूर्व सूत्रोक्त निद्रा निद्रादि छह कर्मों के आबाधा काल से हीन जगन्य कर्म स्थिति प्रमाण उनका कर्म निषेक होता है। वो जो एक इंद्रिय कर्म निषेक उनके निषेक कितने बनेंगे तो ये 3 सप्तमान सागर माइनस अंतर पल्य का संकल्प अभाग हो तो स्थिति बांधी उसमें से उनकी अंतर्मूर्त माइनस कर दो इतने उनके कर्म के निषेक बनेंगे। केंद्रियों में भी संकलेश और विशुद्धि होती रहती है। तो उनके योग्य विशुद्धि में उनके जगन्य स्थिति बंद होगा उनके योग्य संकलेश अति संकलेश में उनके उत्कृष्ट 3 सप्तम इसका बंद होगा। उनके भी सता का बंद चलता ही रहता है ये परिवर्तमान ने पलट पलट कर होते ही नियम से केंद्रीय हो या पंचेंद्रीय हो या जब तक उसकी बंधन ही इच्छित होती असाता की तब तक वो पलट पलट कर बनता ही होता देवों के भी नारकियों के भी किसी की भी उदय भी और बंध भी पलट कर रहता हम वही प्रश्न आता है ना गगन का क्या करता होगा यानी हमने करने में ही सारी संकलेश शुद्धि वो तो परिणाम होते है। अरे पर अशुभ कैसा करता होगा ये किसी को प्रश्न नहीं आता शुभ क्या करता होगा ऐसा प्रश्न परसों किसी ने पूछा वो शिखर जी के जो वहाँ के सारे ऊपर के जीव है वो सारे ऐसे थोड़ी होता है उनके भी वो तो संकलेश विशुद्ध हो गए ना उनके योग ऐसा नहीं
उनका प्रश्न नहीं आता है।
ये तो हमारी मान्यता है बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं तो फिर क्रोध नहीं करना चाहते क्यों हो जाता है वो तो सहज होता है परंतु शुभ भाव हम सोच सोच कर करते हैं उसकी कर्ता बना पड़ा ये अभिप्राय में हमारे क्या है हमने मान लिया कि नहीं ये तो हम सोच समझ कर अशुभ हम नहीं चाहते परंतु
आती रहेगी
अरे उसमें क्रमबद्ध मत सोचो, क्रमबद्ध के लिए अपने शुद्धात्मा का रक्षा करो, तब क्रमबद्ध नक्की हो जाएगा। हम केवल रागादि को देखकर या घटनाओं को देख देख कर क्रमबद्ध की बात करते वो सही नहीं है, यानी निर्णय वाली नहीं है बात। अन्यमति भी देखते जैसे भगवान की इच्छा वैसा हो रहा है, कोई कहते ना जैसे वेस्टी नहीं वैसा, तो उसमें हमने क्या जुदा माना। ये बिल्कुल निर्णय पूर्वक पांच समय पूर्वक जैसे शुद्धात्मा के, क्योंकि वो द्रव्य में सारे पर्यायों का क्रम पड़ा है, आपने पर्यायों की तरफ देखकर पर्यायों का क्रम कैसे कहा, द्रव्य की तरफ देखो तो पर्यायों का क्रम ख्याल में आएगा, तो द्रव्य को देखा ही नहीं हमने। द्रव्य कहते उसको कि अनादि अनंत पर्यायों का क्रम सुनिश्चित है, उसको द्रव्य कहेंगे, उसकी तो बात हमने निर्णय में ली नहीं और हम खाली क्रमबद्ध का नाम लेते हैं। उसमें बोलो
बुरा होता है उसमें ऐसा नहीं।
हाँ, उसकी जो क्रमबद्ध की बात करते हैं वो निरर्थक है।
वो क्या है?
निरर्थक।
निरर्थक ही है, केवल बात करना सीख गया, निर्णय करने की बात है। अगर निर्णय कर लेते तो समय दृष्टि हो जाता। बात करने से निर्णय करने में डिफरेंस है कि नहीं? बात करना तो सीख गए हम, क्योंकि आगम पढ़ते हैं तो आगम की भाषा सीख गए। देखो यहाँ क्या कहते हैं, कर्मनिषेध कितने बनते हमने पढ़ा, यह सूत्र सुगम है। अब आगे बढ़ेंगे। सादा वेदनीय से जहन्नौ ठिदिबंधो बारह सौ मुक्ताणी। अब ये इतनी करता होगा कि नहीं करता होगा, मेरा सवाल है।
साता वेदनी
कल किसमें बात आई थी अपनी?
कल
लघु तत्व स्फोट में आई थी, किसमें आई थी? लघु तत्व स्फोट में ये बात आई थी, आप थे ना कल, तो मैंने तब पूछा था आपको साता वेदनीय और वो गोत्र का वगैरह कितना बंद होता है, तो इसका बारह मुहूर्त होता है। वो किसको हो रहा था, कहाँ पर देखा था?
दसवें,
क्योंकि स्थिति और अनुभव कहाँ तक बनता है? वो लघु तत्व स्फोट बहुत उत्तम ग्रंथ है, तो उसमें आया था ना भगवान की स्तुति कर रहे, और भगवान आपने क्या क्या किया था शब्द श्रेणी में उसकी बात आई। तो कहते सांप्रायिक आश्रव, यानी सांप्रायिक यानी कषाय सहित जो बंद होता है वो दसवें तक है, उसको मिटाकर आपने वीरियापतिक आश्रव प्राप्त किया, तो आपने वहां पर का बंद किया था, तो अभी उसका बंद रुकने वाला है, स्थिति बंद रुकने वाला है, पर वहाँ कितनी स्थिति बनती है मैंने कहा पूछा था आपको, है ना? तो ये बारह बारह वही विषय यहाँ पर आ गया। साता वेदनी का स्थिति बंधन ये दसवें के अंत में होगा, ग्यारहवें बारहवें तेरहवें वाले को साता वेदनी एक ही प्रकृति बनती है, और वो कैसे आई और चली गई एक समय का, रुकती नहीं वहां पर। हाँ, इसको कहेंगे एरिया पथास, यानी आई और चली गई, ये दसवें में बंधी है। हाँ, इसका बंद हुआ बारह मुहूर्त का, यानी बारह मुहूर्त ही इसकी स्थिति बंधी है, वो रहेगी नहीं ज्यादा। अंत में इसका बंद हुआ है, तो केवल ही भगवान में जो साता प्रकृतियों का बारहवें का अंतर्मूर्त है, ये दसवें में बंदी है, तो बारहवें का भी एक अंतर्मूर्त है, और फिर तेरहवें में लंबे काल तक रहेगा, तो ये दसवें में बंधे हुए परमाणु वहां रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोलो दसवें के लास्ट में बारह मुहूर्त की स्थिति बन गई, और कोई जीव बारहवा पार करके तेरहवें में पहुंच गया, और तेरहवें में बहुत साल तक रहते हैं, कोई तीर्थन करे कितने सालों तक कैसे रहेंगे? ये बारह मुहूर्त वाले कैसे रहेंगे? पहले रहे, पहले वाले होंगे, पल्ले के बाद प्रमाण वाले रहेंगे, क्योंकि वो जरा समुद्र करते हैं वहां तक भी पल्ले का असंख्या विभाग प्रमाण होते सीखे रह सकते। देखिए ना हमने बात, ये बंधे परंतु ये बंधे थे, उनका अनुभव उत्कृष्ट बंधा था, तो सत्ता में पड़े हुए सारे उत्कृष्ट अनुभव में उत्कर्षण हो गया है, सत्ता में पड़े पड़े उत्कृष्ट अनुभव वाले हो गए, परंतु ये जो बंधे थे स्थिति वाले वो अपनी स्थिति पूरी करके ज्यादा नहीं रहेंगे, इनका उत्कर्षण नहीं हुआ, क्योंकि नया बंधे के साथ उत्कर्षण हो सकता है। ये परमाणु चले जाए पर इसमें मैक्सिमम अनुभव बंधा था, तो इनके कारण बाकी का अनुभव उत्कर्षण हो गया। उनकी स्थिति लंबी थी फिर भी उनका अनुभव बढ़ गया। चल मेरी बात वो बाद में उदय में आएगा, उत्कृष्ट अनुभाग वाला उदय चलेगा। आगे बढ़ते ये शांता वेदनीय का जघन्य स्थितिबंध बारह होते, जघन्य की बात मिनिमम, और वो कहां पर हो रहा है? दसवीं के अंतर। क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती क्षपक संयत्ति, क्षपक शब्द केवल दसवां गुणस्थान कहने से चलेगा नहीं, उपशम श्रेणी में इससे डबल होता है स्थितिबंध। वहां 24 मुहूर्त का बंध होगा, ग्यारहवें दसवें में अंत में उपशम श्रेणी वाले के 24 मुहूर्त होगा। ये किसका बताएं? क्षपक, क्षपक श्रेणी वाले सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम अंतर मुहूर्त में उसका जघन्य स्थितिबंध है वो है 12 मुहूर्त। अंतिम समय में यह जघन्य स्पंद होता है। अब प्रश्न, 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति वाले दर्शनावरणीय कर्म की अंतर्मूर्त मात्र जघन्य स्थिति को बांधने वाले सूक्ष्म सांप्राय संहित, ये ना प्रश्न देखो समझना, दसवें गुणस्थान वाले है शपथ है और दर्शनावरणी की कितनी स्थिति बांध रहे? एक अंतर्मूर्त। 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति वाले वेदनीय कर्म के वेद स्वरूप 15 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमित उत्कृष्ट स्थिति वाले, देखो क्या कहना, वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तो 30 कोड़ाकोड़ी, पर वो होती है असाता की, पर साता की उत्कृष्ट कितनी बन सकते? तो 15 कोड़ाकोड़ी सागर। तो वहां प्रश्न ये हो रहा है कि जिसका 20 कोड़ाकोड़ी सॉरी 30 कोड़ाकोड़ी जिनका बंध उत्कृष्ट हो सकता था उसकी जघन्य स्थिति अंतर्मूर्त बन रही और इनकी उत्कृष्ट स्थिति 15 कोड़ाकोड़ी और उसका जघन्य बंध 12 मुहूर्त, ये ऐसा कैसा अटपटा कर रहे हैं? ये प्रश्न प्रश्न समझ हाँ, हाँ। उसके प्रोपोर्शन में होना चाहिए था हाँ, हाँ। छोटा अंतर्मूर्त होना चाहिए प्रश्न हाँ। अभी अभी इसका फिर उत्तर शंका फिर बढ़ते, 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति वाले दर्शनावरणीय कर्म की अंतर्मूर्त मात्र जघन्य स्थिति को बांधने वाले सूक्ष्म सांप्राय संयत, 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति वाले वेदनीय कर्म के, वेदनीय इन जनरल लेंगे तो 30 कोड़ाकोड़ी कहेंगे, उसके भेद स्वरूप इसकी कितनी स्थिति है? 15 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमित उत्कृष्ट स्थिति वाले साता वेदनीय कर्म की 12 मुहूर्त वाली जघन्य स्थिति को कैसे बांधता है, इनका प्रश्न है। ख्याल में है ना, उस प्रपोर्शन में जघन्य बांधना था तो यह ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? समाधान, नहीं, क्योंकि दर्शनावरण कर्म की अपेक्षा शुभ प्रकृति रूप सातावेदनीय कर्म की विशुद्धि के द्वारा स्थितिबंध की अधिक अपवर्तना का अभाव है। देखो मैं अपनी भाषा में समझाती हूँ तो बाद में आप समझेंगे। जब तक श्रेणी भी चढ़ना शुरू हो जाता है या मुनिराजों की भी बात है तो इनका बंध उसी प्रपोर्शन में होता रहता है, जैसे पल्ले का असंख्या तो अभाग भी कहेंगे कुछ भी कहेंगे तो उनकी स्थिति किस प्रोपोर्शन में होगी? 20, 30, 40, यानी जितना कुछ बंद हो रहा है, मान लेते हैं 1000 वर्षों का भी लास्ट लास्ट में बंद होने लगा तो उसका प्रोपोर्शन यही रहेगा। कैसा? मान लेते हैं नाम गोत्र का 1000 हो रहा, ये समझे 20 वाले के लिए, तो 30 वाले के उसके 1.5 गुना होगा तो 1500 वो ये बीसी है, ये तीसी है, और जो 40 ये वाले हो गए वो इससे डबल हो गए यानी 2000 हो गए। यानी समझो किसी का पल्ले होता है तो 1.5 पल्ले और 2 पल्ले, ऐसा ही प्रोपोर्शन चलता है। परंतु ऊपर ऊपर जाता है तो क्या होता है, बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है, क्योंकि वो जो तीन जो घाती कर्म जो है ना, घाती कर्म तो अप्रशस्त है, अति अप्रशस्त है, तो वो इनके बीच में आ जाते हैं, उनका बंध ये छोड़कर ये इस प्रपोर्शन में होने लगेगा और बाद में इससे भी नीचे तो इनका मिनिमम होने लगेगा। अति अप्रशस्त है उसकी जो घटना जल्दी हो जाती है, और ये तो प्रशस्त है वैसे, तो ये जो उसका जो उल्टा पुल्टा होता है ना, ये श्रेणी में हो जाता है। उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर ये बात ऐसी बनती है। पहले तो बीसीए किसी 40 तो प्रोपोर्शन था उसका, तो उसी प्रोपोर्शन में उनका बंद भी होता था। जब तक पल्ले प्रमाण हुई, संख्या 1000 वर्ष की हुई, तभी ऐसा ही था। बाद में ये ऐसा उलटना हो जाता है, ये इस तरह से पोजीशन बन जाता है। देखो ये कितना साइंटिफिक है, वो पूरा ही पूरा। इसलिए प्रश्न खास पूछवाया उन्होंने, आचार्यों ने खुद शंका उठाई है। तो उदाहरण देते हैं कि सातावेदनीय शुभ प्रकृति है। यहाँ जो आघाती में तो शुभ ही प्रकृतियां बन रही है, सातावेदनीय बन रहा है, यशस् कीर्ति बन रही है, उच्च गोत्र बन रहा है, आयु तो नहीं बन रही यहाँ पर। तो कहते ये तो प्रशस्त प्रकृतियां हैं, और जो आघाती वगैरह वो सारी जो अप्रशस्त थी घाती कर्म, तो उसका जल्दी जल्दी उसका जैसे स्थिति सत्व और स्थिति बंध बहुत जल्दी जल्दी घटते हैं। यानी उसके जो कांडक होते हैं को या कुछ घटना होता है, अपसरण होता है, बहुत फास्ट हुआ। तो ये इनका शुभ प्रकृतियों का ज्यादा रह गया लास्ट में, ये उसका कारण है। परंतु इनमें यही प्रपोर्शन रहेगा, कैसा वेदनीय का 12 है, क्योंकि वो तीसरे वाला कर्म है। तो नाम गोत्र का 8 मुहूर्त कहेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं उसको, 8:12 ये प्रपोर्शन वहां पर भी रहा उनमें प्रशस्त प्रकृतियों में। परंतु अप्रशस्त वाले अंतर्मुख के होकर चले गए, अभी आगे बढ़ते गए। अर्थात सातावेदनीय पुण्य प्रकृति है, अतएव विशुद्धि के द्वारा उसकी स्थिति का घात अधिक नहीं होता। स्थिति का घात भी ज्यादा नहीं होता, और जिस स्थिति जैसी है उतने प्रपोर्शन में उसका बंध भी होता। किंतु दर्शनावरणीय पाप प्रकृति है, ये सारे घाती कर्म तो पाप रूप है, अतः वो विशुद्धि से उसकी स्थिति का अधिक घात होता है।
घात में नहीं,
घात यानी वो स्थिति कांडक घात होते हैं, घात होते हैं नहीं, जो स्थितियां जो है ना, सपना होती है तो क्या है, पहले तो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण होते हैं, बाद में घटते 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 गए, पल्ले से भी घटते गए। तो उसके जो बहुत सारे निशे एक एक अंतर्मुहूर्त में नीचे आते हैं, थोड़ा 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 करके इतनी स्थिति घट गई, फिर उतने कांडक में स्थिति घट गई, उसके टुकड़े के टुकड़े नीचे आते जाते हैं, अपकर्षण होता है, गुण श्रेणी में चले जाते हैं। यानी इसी तरह से कर्म की निर्जरा होती है, तो बड़े बड़े कांडक उसके हो जाते हैं, यानी बची हुई स्थिति जो कम रह जाती है। तो कांडक घात का जो कांडकों का प्रमाण है वो बड़ा बड़ा हो जाता है, यानी वो अति अप्रशस्त कर्म सबसे पहले चले जाते हैं। जैसे सम्यक तो होता है चौथा गुण स्थान पर, अति अप्रशस्त मिथ्या का कर्म सबसे पहले चला जाता है। ये तो स्वाभाविक ही ऐसी बिल्कुल परिस्थिति है। हमें तो क्या, हमने कैसा कर्म बांधा होगा, क्या होगा, उसी की चर्चा करते उसी में रोते रहते। तो कहते अपना लक्ष्य करो ना, वो तो कर्म अपने आप चले जाएंगे, अति अप्रशस्त पहले चले जाएंगे। यहाँ लिखा ना, विशुद्धि से वो अति पाप प्रकृति की स्थिति का अधिक घात हो जाता है। अब सातावेदनीय कर्म ऊपर पढ़ना है, अंतोमूर्तम आबादा, सातावेदनीय कर्म का जघन्य आबादा का अंतर्मूर्त, क्योंकि हमने तो अंत कोड़ा कोड़ी के लिए भी अंतर्मुहूर्त है, ये तो 12 मुहूर्त के लिए तो अंतर्मुहूर्त होगा ही होगा, क्योंकि संख्यात रूपों से 12 मुहूर्तों के अपवर्तन करने पर अंतर मुहूर्त की ये जो पूर रहेगी हाँ पुरानी पुस्तक और की भी लिखना है, अंतर मुहूर्त की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ कांडकों का प्रमाण संख्यात रूप। आबाधुनिया कम्मठिली कम्मनी सेव, सातावेदनीय कर्म के आबाधा काल से ही जघन्य कर्म स्थिति प्रमाण उसका कर्म निषेक होता है। वे जघन्य कर्म स्थिति में से उसके आबाधा माइनस कर दो, 12 मुहूर्त में से उसके अंतर्मुहूर्त माइनस कर दो, तो इतनी उसके निषेक जमे, तो इतने निषेक इतने समय में फिर जाएंगे, वो के ऊपर चढ़ने वाले नहीं है। देखो यहाँ जघन्य स्थिति और मैक्सिमम अनुभाग है प्रशस्त प्रकृति, ज्ञानावरणादि की मिनिमम पाप प्रकृति स्थिति मिनिमम, उसका जगह में अनुभाग भी जगह नहीं होगा, अनुभाग में उल्टा पुल्टा होता है। अभी तो स्थिति की बात केवल करें, आप प्रश्न उसमें पूछना। आपका प्रश्न ये है दसवें गुण स्थान में जो प्रशस्त प्रकृतियाँ बनती है, तो बनती है तो कितना बन रही है अभी हम देख रहे हैं ना, बारह मूर्त की बंदी। कौन सी? साता वेदनी का अंतर्मूर्त आबादा और बारह मूर्त की बंदी। तो उत्कर्षण किसका होता? पहले सत्ता में पड़े हुए का। तो पहले सत्ता में पड़े हुए है जो ये उदय के समय से लेकर चल रही बात, और उनके जो सत्ता में तो पल्ले के असंख्या विभाग प्रमाण पड़े हैं। उत्कर्षण किसका होगा? आउली के ऊपर के कुछ परमाणु यहाँ जा सकते हैं। उत्कर्षण कहाँ तक होगा? दस मुहूर्त तक ही, बारह मुहूर्त तक ही होगा
नए बनते।
हाँ, और उनका ही होगा जो बंधने के बाद उनका कितना काल पूरा हुआ है ये भी कंसिडर करना है। उनका बंध के समय से लेकर सोचना है, बंध के समय से लेकर शक्ति स्थिति कितनी बाकी उतना ही ऊपर चढ़ सकते हैं। अभी उनकी स्थिति पूरी होने को ऐसा भी कुछ होगा तो वो तो चले जाएंगे, ऐसे कुछ परमाणु यहाँ तक चढ़ सकते ऊपर।
तो फिर ऊपर के पर कुछ ही परमाणु रह गए, फिर ऊपर के क्या होगा?
ऊपर के कुछ नहीं, उसमें क्या, उसका तो अपकर्षण ही चल रहा है। अपकर्षण के द्वारा गुण श्रेणी बन के निर्जरा ही चल रही है। ऊपर वहीं तक चलते है तो नए नए बंधने वाले के साथ, मैंने ये भी बताया था ये इतने सारे पड़े परंतु इनका अनुभव बढ़ जाता है, बढ़ता भी है क्योंकि यहाँ तो इसका अनुभव ज्यादा है। इनकी भले स्थिति कम है पर अनुभव मैक्सिमम है इसमें, तो सत्ता में पड़े हुए का मैक्सिमम भी बढ़ता चला जाता है। वो भले ऊपर के निषेकों में पड़े तो भी पड़े।
अच्छा,
नए बंधने के साथ संक्रमण होता है ना, अभी परिणाम उत्कृष्ट है।
संक्रमण
स्थिति का अनुभव, अनुभाग तो सभी निषेकों में जो अनुभाग पड़ा है, अनुभाग की अपेक्षा हम जुदी उसकी रचना बताते हैं।
तो पहले बांधे हुए जो अनुभाग कम है तो
और वो बढ़ेगा,
वो भी बढ़ जाएगा।
हम देखते हैं ना, जैसे अभी अपना वर्तमान का जो परिणाम है तो पुराने बंधे हुए में भी अनुभाग में भी परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? प्रकृतियों में भी होता है, सजातीय में, अनुभाग में भी होता है। जैसे पहले हीन पुण्य बांधा था और अभी उत्कृष्ट पुण्य बांध रहे, तो पहले के परमाणु भी उत्कृष्ट पुण्य रूप से होते। कभी कभी क्या है, असाता का साता, साता का असाता, ऐसा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए केवल हम साता असाता में लगाते हैं, अनेक प्रकृतियों में बात होती है। पहले पाप से अधिक अनुभव, अभी ज्ञान आवरण की बात है, पहले अनुभव ज्यादा था, आवरण ज्यादा था, अभी उसमें लगे रहे तो आवरण भी उदय भी कम हो जाएगा ना। तो समझ में आती है बात, हम कहते हैं समझना चाहो तो उसमें लगे रहो तो उसमें समझ में आती है बात। पहले से हम रोक लगाते हैं, कुछ नहीं समझे आता है। अब कितने दूर से आ रहे हैं, घंटा भर तो उनको बस में बिताना पड़ता है, घंटा डेढ़ घंटा कर्मों की चेष्टा होती है। हाँ देखो, उसमें भी देखो मंदिर के लिए होता है कि नहीं, हमें मंदिर के दर्शन करने, वो अंदर वो भाव है, हमें स्वाध्याय करना है, हमें ये बात पढ़नी है, ये भी एक शुभ भाव है कि नहीं? अभी स्वाध्याय करना वो अलग, परंतु मुझे इस ये बात सुननी है, समझनी है, इसमें मेरे कल्याण की बात है, ये जो हो रहा है ये भी शुभ भाव है। उसके लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो भी शुभ भाव है।
उसका भी अनुभव करे का प्रकृति जो हम लोग साथ में बोले तो यहाँ पे जो सपना
तीर्थंकर प्रकृति आठवें तक बनती
है, नौवे दसवें दिवस में भी तीर्थंकर
उसकी बात नहीं लेना यहाँ पर खास करके,
वहाँ पे अनुभव में कितनी लग रही
अभी होता होगा तो मैं अभी नहीं कह सकूंगी, क्योंकि वो अनुभव के उसमें प्रकरण में देखना पड़ेगा, संक्रमण के प्रकरण में। पूरी एक पुस्तक धवला की आएगी, अनुभव का भी संक्रमण आएगा उसमें, कौन सी सजातीय में ट्रांसफर हो सकती है उसकी बात
नहीं, ये तो मैं
अनुभव भी किसका बढ़ेगा, वही प्रकृति बनती है तो बढ़ेगा ना। दूसरी प्रकृति बनने से इसका कैसा पड़ेगा ये कहना चाहिए। अभी सजातीय में किसमें क्या हो जाता है उसके तो रूल्स अलग होते हैं, वो तो अनुभाग संक्रमण में देखना पड़ेगा।
सभी मैंने प्रेस्तुत किया बाकी योग से कसाई में कोई फर्क पड़ेगा, पर मेरे योग तो खाली प्रकृति और प्रदेश पर किए थे।
योग से कसाई का क्यों संबंध लगा रहे आप, हमने क्या देखा था? अभी अभी दसवें गुण स्थान में भी जहाँ स्थिति बंध अभी कैसा हो रहा है, घटते चला जा रहा है, तो घटते चला रहा है प्रकृति बंध कैसे हो सकता है? उत्कृष्ट भी हो सकता है, जगन्य भी हो सकता है, पंचन्य भी हो सकता है, योग का उसका कोई संबंध नहीं है। उत्कृष्ट स्थिति बंध हमने, उत्कृष्ट प्रदेश बंध की बात है, ऐसा कोई जैसे हमने देखा ना ये जघन्य स्थिति बंध दसवें के अंत में होता है, सातावेणी का, सातावेणी का उत्कृष्ट अनुभाग बंध भी यहीं पर होगा, और प्रदेश बंध कहाँ होगा? उत्कृष्ट प्रदेश बंध सातावेणी का कहाँ पर भी होगा? हम तो कहेंगे चुपारवे को होगा, पंत प्रोवाइडेड वहाँ उसका योग ज्यादा है, तो पंत दसवें में भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय के योग योग किसको ज्यादा है उसकी बात है। उसमें और भी जो बातें लगती है कि जहाँ अधिक प्रकृतियां बनती है वहाँ वो योग नहीं होगा, यहाँ छह बनती है, बाद में आके लिए एक ही बन देगी, तो पूरा समय प्रबद्ध वहाँ चला जाता है। बारहवें तेरहवें में प्रदेश ज्यादा आ जाएगी क्योंकि उत्कृष्ट उसी का होगा अगर, परंतु वहाँ उसको अगर लिया नहीं है, दसवें तक की बात चल रही है, तो अगर दसवें तक की बात करेंगे तो अभी उसमें बहुत सारे कंडीशंस होती है, अभी वो विषय यहाँ समझाने जाओ तो कोई नहीं समझेंगे, हम तो अभी स्थिति तक लिमिट करें। आपने देखा वो कशा वाला चार्ट?
हाँ, मैंने देखा।
हाँ, आज पढ़ना, अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे उसकी स्थिति कर, जगन्य स्थिति में से उसका आवादा माइनस करो उतने उसके कर्म निषेध होते हैं। यह सूत्र सुगम है। अब मिथ्यात्व की बात, मिच्छत्तस्य जगन्नगो ठिगिबंधो। अब मिथ्यात्व का स्थिति बंध, मिथ्यात्व का बंध कहाँ होता है? तो मिथ्यात्व अनुष्ठान में होता है। संगी पंचेन्द्रियों को अगर हम मार्गणाओं में पूछेंगे तो वो जब सात्वे के सम्मुख है तब उसका जगन्य स्थिति बंध, पर हमें इन जनरल देखना है तो एकेन्द्रियों में उसका जगन्य स्थिति बंध होगा, वो कितना होगा? एकेन्द्रियों के लिए एक सागर उत्कृष्ट है, उनमें भी जगन्य कितना होगा? तो पल्ले का असंख्या तो हम माइनस कर दो,
एक सागर माइनस पल्ले का असंख्या।
हमने वो दर्शनावरण के लिए कौन सा देखा था?
तीन सप्तम
दर्शनावरण ने, वो पांच निद्रा के,
पांच निद्रा और
तीन सप्तम देखा, या एक सागर में पल्ले का संख्या को आप कम कर दो। अभी सूत्र पढ़ेंगे, मिच्छत्तस्य जघन्नगो ठिगिबंधो सागरोमस सागरोमस्म हुआ सागरोमस सप्त सप्त भागा, वहाँ क्या तीन सप्तमांश किया, यहाँ सात सप्तमांश है, एक सागर। सत्त सत्त भागा पलिदोमस असंकचरी भागे न उनिया, यानी सात सप्तमांश है ने एक माइनस पल्ले का असंख्या का भाग। नीचे पढ़ते मिथ्यात्व कर्म का जघन्य स्थिति बंध पल्लोपम के असंख्यात भाग से ही सागरोपम के सात बटे सात भाग प्रमाण है, यानी एक सागर माइनस पल्ले का असंख्या का भाग। ये सब पढ़ते तो कंफ्यूजन होता है क्योंकि बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीवन है। देखो क्या कहा, एकेंद्रियों में उत्कृष्ट बंध, एकेंद्रियों के लिए उत्कृष्ट भी बादर को होगा पर्याप्त उनको, और उनका जगन्य भी बादर पर्याप्त उनको ही होगा क्योंकि विशुद्धि बादरों की ज्यादा होगी। कल इनका जो प्रश्न था एक बार अश्विन भाई का, तो एकेंद्रियों की जो हमने एक सागर या उनकी उत्कृष्ट स्थिति है, और जगन्य जो पल्ले का असंख्या तो अभाव उनकी वो जगन्य, ये उत्कृष्ट है जगन्य, उत्कृष्ट एक इंद्रियों में उत्कृष्ट कौन मानेगा? बादल पर्याप्त, सूक्ष्म नहीं, बादल पर्याप्त एक इंद्रिय, ये बाप वो कहते हैं बादल पर्याप्त उत्कृष्ट स्थिति बांधे। जगन्य भी कौन बांधेगा? बाप ही बांधेगा, बाप जो अभी उसमें फिर बादल पर्याप्त सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त लेना, फिर वो बादल पर्याप्त लेना, सूक्ष्म पर्याप्त यानी जो सूक्ष्मों की बीच वाली लेना रेंज उनकी, अपर्याप्तों की भी बीच में आती है, पर्याप्तों की रेंज ज्यादा है यानी उत्कृष्ट की तरफ भी पर्याप्त को लेना, जगन्य की तरफ भी पर्याप्त को लेना यानी उनकी संकलेश भी ज्यादा होगी, विशुद्धि भी ज्यादा होगी। इस तरह हर एक के लिए ये ऐसा ही है, एक इंद्रियों की अपनी जुदी रेंज, इंद्रियों की अपनी जुदी, हर एक में से पर्याप्तों के ही उत्कृष्ट, पर्याप्तों के ही जगन्य, यही यहाँ पे है कि देखो मादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीवों के आबाधा स्थान विशेष स्वरूप। आबाधा स्थान विशेष का अर्थ समझ में, उत्कृष्ट आबाधा माइनस जगन्य आबाधा, एक रूप अधिक तो आबाधा के टोटल हम के विकल्प मिलेंगे। आवली के असंख्या के भाग से आबाधा कांड को गुणा करके उसमें से एक कम करके सागरोपम में से घटा देने पर मिथ्यात्व कर्म की जघन्य स्थिति उत्पन्न होती है। हमने पहले ऐसा ही देखा था उसे, वो 45-64 उसके बाद उन्होंने समझाया शंका। बादर एक इंद्रिय अपर्याप्तों में अथवा सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त जीवन में मिथ्यात्व कर्म का जघन्य स्थिति बंद क्यों नहीं होता? समाधान, नहीं, क्योंकि बादर एक इंद्रिय अपर्याप्तों में अथवा सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों में विचार स्थानों की बहुलता का अभाव, विचार स्थानों की बहुलता का अभाव हमारी भाषा में उनकी रेंज छोटी और वो बीच में आती है। आप कहेंगे रेंज छोटी होने दो, पर जगन्य सबके लिए होता है ऐसा कौन? नहीं, ये जगन्य भी बादर पर्याप्तों के लिए, उत्कृष्ट भी बादर पर्याप्त, अपर्याप्तों के लिए वो बीच में, सूक्ष्म के लिए में और भी, और सूक्ष्म अपर्याप्तों के लिए और भी छोटी रेंज है, वो बीच में आती है। ये ऊपर जो सूत्र के नंबर है ना, 7 है ना, वो 13 है और 8 के बदले 14 है। अंतोमूर्तम आबादा, वो तो भी बराबर करा, अंतोमूर्तम आबादा मिथ्यात्व कर्म का जगन्य आबाधा काल अंतर्भूत है, क्योंकि एक समय कम जगन्य स्थिति में, अभी पहले जैसे हमने किया था 45 का 44 किया था कि उसको आबाधा कांड से भाग दिया था, 11 आए थे फिर उसने एक महीना लगाया, तो एक समय कम जगन्य स्थिति में आबाधा कांड से भाग देने पर जो राशि लब्ध हो उसमें एक रूप अधिक करने पर उत्पन्न राशि को जगन्य आबादा काल माना है। ये अभी अभी हमने दो पेज पहले देखा था, 185 पेज। आबादोनिया कम्मठिरी कम्म निसे ओ करना, निसे आ हुआ है ना, निसे ओ मिथ्यात्व कर्म के आबादा काल से ही जगन्य कर्म स्थिति प्रमाण उसका कर्म निषेध होता है। आबादा नहीं है जगन्य आबादा माइनस करना जगन्य स्थिति में से, यह सूत्र भी सुगम है। अब कहते हैं बारसन्नम कसायाणम जहन्ना ठिदिबंधा सागरोमस चत्तारी सत्त भागा पलिदोमस असंख्येत्यदि भागेन उनिया। तो मेरा प्रश्न है मनीषा बेन के लिए, ये 12 कषाय लिए हैं तो किसको छोड़ा होगा? मालूम है 16 कषाय, तो उसमें यहाँ 12 कषाय लिए, जिसका जगन्य स्थिति बंद उन्होंने 4 सप्तमोश सागर यानी एक इंद्रियों में लिया, तो ऐसे कौन से कर्म आप ही सोचना सोने गए। 16 कषाय में से किसको छोड़ा होगा उन्होंने? 12 कषाय उनका एक इंद्रिय में लिया है, तो कौन से 4 कषाय छोड़े हैं जिनका जगन्य स्थिति बंद अन्य कहीं पर होगा? संजोरन समझा। आप क्या कहते हैं? क्यों संजोरन में से लोभ की बात अंतर्मुख तो देखी थी, अब उसके नीचे आ जाओ नरवे की जहाँ उनकी बंधन चित्ती होती है वहाँ पर उनका जगह निबंध है। ख्याल में आई बात? कितना याद है?
दो मास, एक मास होता
है। क्रोध का दो मास, मान का
एक
मास, और माया का 15 दिन, और लोभ का अंतर्मुख। ख्याल में आई बात? नवे गुणस्थान में संकलन बंद रहे ना श्रेणी में भी, तो नवे गुणस्थान में जहाँ क्रोध बंधना रुक जाता है वहाँ क्रोध का बंद होता है 2 महीने का, 2 महीने फिर क्रोध का बंद रुक गया, माया मान माया लोग बंद गए, फिर माया जहाँ तक बनती है उसके अंत समय तक मान का बंद होता है 1 महीना, फिर माया जहाँ बंधना रुकती है वहाँ माया का बंद है 15 दिन, फिर लोग जहाँ रुकता है नवे के अंतर में उसका बंध होता है अंतर्मुख, इसलिए उनको छोड़कर यहाँ 12 दशाएं दी। इनका बंध एक इंद्रियों के मिनिमम होगा क्योंकि प्रत्याख्यान इनका बंध कब है? संज्वलन को छोड़ो, प्रत्याखरण का बंध कहाँ तक है? चौथे तक। प्रत्याख्यानावरण का बंध कहाँ तक है? पांचवे तक। वहाँ स्थिति कितनी बंधी है? अंतर कोड़ा कोड़ी सा, इसलिए वो जघन्य स्थिति नहीं घूमने गिनेंगे। तो जघन्य के लिए हमको कहाँ देखना है? एकेंद्रियों को, क्योंकि एकेंद्रिय तो सबका बंद हो रहा है ना, 16 के कुशाम का हो रहा है। एकेंद्रीय जीव संज्वलन का भी इतना ही बंद कर रहे हैं, 4 सप्तमांश सागर माइनस पल्ल का संख्या का, परंतु वो 4 सप्तमांश सागर से वो 1 महीना 2 महीना बहुत कम है ना, इसलिए वहां लेना जघन्य। उसके बाद में बताएंगे 4 संज्वलन, 3 की, 1 की तो बता दिया, अभी 3 की बता देंगे। देखो, बारसन्नम कसायानम जघन्ना ठिदी बंदा सागरोमस चत्तारी सत्त भागा पलिदोमस असंख्य भागेन गुणया। हमने देखा था ये 16 कषायों को 40 ये कहते, 40 कोड़ा कोड़ी उसकी उत्कृष्ट स्थिति है, उस प्रपोर्शन में यहाँ 4 सप्तम कषाय। तो अनंतानुबंधी आदि 12 कषायों को इन्होंने स्पष्ट लिख दिया नीचे, जघन्य स्थिति बंद पल्यपम के असंख्यात भाग से ही सागरोपम के 4/7 भाग प्रमाण है, यानी 4/7 सागर माइनस पल्य का असंख्यात इनका इतनी उसकी जघन्य स्थिति है। सागरोपम के 4/7 भागों को पल्लोपम के असंख्या के भाग से हीन करना किसने कहते हैं? समान नहीं, क्योंकि वेदना सूत्र में आगे वो आने वाली बात है, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीवों में विचार स्थान है, उसके पलटने का स्थान पल्लोपम के असंख्या के भाग मात्र ही निर्दिष्ट किए गए हैं, उत्कृष्ट स्थिति में से विचार स्थानों को घटाने पर जघन्य स्थिति प्राप्त होती है, जैसे हमने 64 में से वो 19 घटाए थे वैसे। देखो यहाँ क्या कहते हैं, हमने आपको बताया था ना बादर पर्याप्त तो कोई उत्कृष्ट होता है, जैसे आपको लिखना है तो ऐसा लिखना बा यानी बादर पर्याप्त, एक इंद्रियों में ये भेद है वही उत्कृष्ट बंद करेगा, उससे कम बंद बादर अपर्याप्त को होगा उनका उत्कृष्ट, उनके लिए उत्कृष्ट। उसके बाद सूक्ष्म पर्याप्तों का उत्कृष्ट होगा, फिर सूक्ष्म अपर्याप्तों का उत्कृष्ट होगा, ये 4 लेना है, बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त। अभी उल्टे क्रम से उनका अपना अपना जघन्य होगा, जघन्य के लिए सूक्ष्म अपर्याप्त का नाम पहले लेना, सूक्ष्म अपर्याप्त का जघन्य, देखो ये इनकी रेंज इतनी है, फिर इसके बाद इसका नंबर लगेगा, सूक्ष्म पर्याप्त का जघन्य, बाद इसका लगेगा नंबर बादर अपर्याप्तता जगन है और सबसे विकेंद्रियों में जगन है वो बादर पर्याप्तता जगन है इसको ऐसा नहीं है बाप इस तरह से ये उसकी रेंज स्थिति बन लगी विक्रम से चाली ना बादर पर्याप्त उत्कृष्ट बादर अपर्याप्त उत्कृष्ट सूक्ष्म पर्याप्त उत्कृष्ट सूक्ष्म अपर्याप्त उत्कृष्ट फिर सूक्ष्म अपर्याप्त जगन्य फिर सूक्ष्म अपर हाँ सूक्ष्म पर्याप्त जगन्य फिर बादर अपर्याप्त जगन्य और बादर अपर्याप्त बादर पर्याप्त जगन्य इस तरह से उत्कृष्ट के चार और जगन्य के चार जिस उतरते क्रम से आए फिर उस बीच वाले को ही पहला नंबर लेना फिर आगे चल एक इंद्रिय में ही आठ होते हैं बाकी द्विंद्रियादि में तो चार चार होंगे
पर्याप्त
पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त हो गया नंबर 188 16 नंबर का सूत्र अंतो मोहत्तम आबादा अनंतानुबंधी आदि 12 कषायों का जगन्य आबादा काल अंतर्मोहत्त है क्योंकि आबादा कांडक के द्वारा एक समय कम जगन्य स्थिति को अपवर्तन करके हमने 45 में से एक समय करके 44 निकाला था उसको कांडक चार से भाग दिया था 11 आए थे उसमें एक मिला है वही बात बता रही पुनः उसमें एक समय अधिक करने पर जगन्य आबादा की उत्पत्ति उपलब्धि होती है शेष सूत्रार्थ सुगम है आबाधुनिया कम्मठिदि कम्मनिसुर उक्त 12 कषायों के आबादा काल से ही जगन्य कर्म स्थिति प्रमाण उनका कर्म निषेध होता है यह सूत्र भी सुगम है देखो अभी 12 कषाय में से जो छोड़े ना लोग को तो बता दिया था अंतर्मुक्त अभी बाकी तीन की बात बताएंगे बोध संजलन मान संजलन माया संजलनानम जहन्नो ठिदिबंधो वे मासा मासम पक्षम दो माह महीने एक महीना और एक पक्ष है 15 दिन क्रोध संजलन मान संजलन और माया संजलन इन तीनों का जघन्य स्थितिबंध क्रमशः 2 मास 1 मास और एक पक्ष है यथा संख्य अर्थात संख्या के क्रमानुसार क्रोध संजलन का जघन्य स्थितिबंध 2 मास देखो जहां क्रोध का बंध रुकता है वहां क्रोध मान माया लोग सभी बंध रहे हैं सभी का बंध वहां 2 महीना हो रहा है उसके बाद क्रोध का बंध रुकता है अभी मान माया और लोग बंध रहे हैं बनते बनते जब मान का अंतिम समय आएगा बंधने का तो सबका बंध तीनों का बंध 1 महीना होगा फिर माया और लोक 2 बनते 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 जहां माया का अंतिम समय आ गया तो माया और लोक दोनों का बंध 15 दिन होगा फिर लोक का 15 दिन से घटते 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 अंतर्मुख प्रमाण शेष रह जाएगा 9वें के अंत में उसका अंतर्मुख प्रमाण बंद रहेगा ये उसका तो जहां उसके बंध रुक जाता है वहां उसका मिनिमम बंध है जगन्य बंध है तो कहते क्रोध संज्वलन का जगन्य स्थिति बंध 2 मास मान संज्वलन का 1 मास और माया संज्वलन का 1 पक्ष होता है ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए शंका क्रोध आदि पदों के साथ पृथक पृथक संज्वलन शब्द का उच्चारण किस लिए किया है पहले भी ऐसे बताते थे ना संजुलन को हमेशा ऐसे पृथक पृथक क्योंकि उनके बंधे विच्छिद भी अलग अलग पोजीशन पर हो अब ये सारे अलग अलग उसमें नियम भी बता रहे हैं समाधान ये समाधान हुआ फिर समाधान समाधान मात्रा रहेगी और वो अस्पष्ट आया नहीं क्योंकि भिन्न भिन्न स्थानों में इन तीनों संजुलन कषायों का बंध विच्छेद बतलाने के लिए यानी बंध होना रुक जाता है अलग अलग उसके पृथक पृथक उसका अर्थात संजोलन शब्द का उच्चारण किया है विशेष के लिए देखो इसी भाग के पृष्ठ 45 का विशेषण ये भी पहले भी बता चुके हैं क्योंकि बाकी तो अनंतानुबंधी 4 ऐसे سب کا ایک ساتھ لیتے ہیں اور اس کا ایک ایک کا نام جدا جدا لیتے ہیں. اتوا پریارتھک نئے کے اولمبن کیے جانے پر تینوں کشاؤں کے ایکتا کا ویرود ہے, ارتھات تینوں ایک نہیں ہو سکتے, انہیں کرودھ ہے وہ مان نہیں ہو سکتا, مائن نہیں ہو سکتا, اس لیے کرودھ آدی پدوں کے ساتھ سنگولن شبد کا پرتک پرتک اچارن کیا ہے. اوپر انتم اتم آباد, یہ 22 نہیں 19 نمبر چاہیے سوتر کا نمبر. क्रोधादि तीनों संगलन कषायों का जघन्य आबादा का अंतर मुहूर्त है, वो खूब दीर्घ चाहिए मुहूर्त, क्योंकि संख्यात रूपों से जघन्य स्थिति में भाग देने पर जघन्य आबादा प्राप्त होती है. डायरेक्ट उन्होंने संख्यात से भाग देने को सतर्क किया. आबादुनिया कम्मठी कम्मन से हो, क्रोधादि तीनों संज्वलन कषाम के आबाधा काल से ही जघन्य कर्म स्थिति प्रमाण उनका कर्म निषेय होता है. यह सूत्र सुगम है. पुरुष वेद से जघन्नो स्थितिबंधो अठवस्साणि, पुरुष वेद का जघन्य स्थितिबंध 8 वर्ष है. जघन्य स्थिति बंद कब होगा, अभी उसकी बंद विच्छित्ति होती है, उसका बंद कब तक है, तो जब तक कषा वेदों का उदय है, तो 90 के पहले भाग में जहाँ वेद का उदय मिट जाता है वहीं पर उसका अंतिम बंद स्थान है, यानी वहाँ एक पुरुष वेद भी बन रहा है और चार संगोलन भी बन रहे हैं, तो उस समय उसका स्थितिबंध कितना हो रहा है, तो 8 वर्ष का हो रहा है. वहां पर इसका 8 वर्ष प्रमाण उसकी स्थिति बन रही है. यहाँ पर तो पुरुष वेद का जघन्य स्थितिबंध 8 वर्ष है. अंतमुहूर्तम आबाधा, आबाधा काल अंतर्मुहूर्त है. ये स्त्री वेद का नपुसक का जघन्य बंध कौन करेगा?
नपुसक का पहले दिवस है.
एक इंद्रिय करेगा, क्योंकि पंचेंद्रिय करेगा तो अंत कोड़ा कोड़ी करेगा, प्रायः लक्ष्मी मिलना तो एक इंद्रिय करेगा ना, मिथ्या दृष्टि है. एक इंद्रियों में सब कर्म जघन्य बनते हैं, पुरुष वेद वहाँ श्रेणी में बन रहा है इसलिए उसका जघन्य वहाँ दिखा. एक इंद्रिय करेगा ना, अभी वो जो कितनी बनती है उसकी, उस प्रोपोर्शन में होगा उसका, जो सप्तम सागर में वो कम करेंगे. अभी यहाँ आई नहीं बात, पर पहले हम सोच सकते हैं ना. देखो पुरुष वेद का जघन्य स्थितिबंध 8 वर्ष है. अंतमुहूर्तम आबाधा, आबाधा काल अंतर्मुहूर्त है. आबाधुनिया कम्मटी कम्मनी से हो, आबाधा काल से ही जघन्य कर्म स्थिति प्रमाण उसका कर्म निषेक होता है, यानी जब अंत में बंद हुआ है तभी 8 वर्ष का बंद हुआ है, उदय रुक गया है, इसको कहें ये नव का समय प्रबद्ध, बाद में थोड़े काल में उसका भी सपना बाद में हो जाएगा उसका. अब देखो ये जो अभी तक बड़ी लंबी 24 लिस्ट है अभी. तो ये सब उसमें घटित किया, किसमें?
एक इंद्रिय को,
एक इंद्रिय में दो सप्तम, जो नाम कर्म है, जो जो 20 कोड़ा कोड़ी वाले जो ना उत्कृष्ट वाले, तो उनके दो सप्तम और उसमें से पल्ले का संख्या तो अभाव कम करेंगे. देखो अभी हम पढ़ेंगे स्त्री वेद नपुसक वेद, ऊपर ऊपर इथि वेद नमुसे वेद हस्य रदि अरदि सोग भय दुगुंछा तिरिख गई मनुष्य गई एइंद्रिय द्विइंद्रिय तीइंद्रिय चौरइंद्रिय. देखो दो ही गति लिया, क्योंकि एक इंद्रिय जीव नर गति देव गति को नहीं पाते, उसका जघन्य बंध कौन करेगा? असंग करेगा हजार साल. एइंद्रिय द्विइंद्रिय तीइंद्रिय चौरइंद्रिय पंचइंद्रिय जादी ओरालिय तेजा कमय शरीरम छन्नम संठानान। केंद्र जी भी छो संस्थान बांधते हो ओरालिय शरीर अंगो अंगम छन्नम संगणनानम वर्ण गंध रस फासम। क्योंकि इनकी बंधे विच्छुति जहाँ होती है ना वहां पर भी अंत कोड़ा कोड़ी बंध हो रहा है, इसलिए इसको एक इंद्रियों में गठित करेंगे। तिरिख गई मनुष्य गई पावगानु पूवी अगुरु लघु अघाध प्रघाध उत्साह आदा उच्चो पसत्थ व्याय गति अपसत्थ व्याय गति तसत हावर बादर सुहम पज्जत अपज्जत पत्तेय सहारण शरीर थिर अथिर सुभ अशुभ सुभग दुभग सुसर दुस्सर आदेज अनादेज अजस कीर्ति। यश कीर्ति को नहीं लिया वो दसवें में बताएंगे आठ मुहूर्त। निमिन नीजा गोदानम उच्च गोत्र को भी नहीं लिया वो दसवें में बनती है। जहन नगो ठीरी बंदो सागर वमस वे सत्य भागा पलिदो वमस असंकेत भागे न होने दो सप्तम अंश में से उसको माइनस कर दिया। जीवित नपुसक वे इसलिए साथ में लिया कि उसके उत्कृष्ट जुदा जुदा है। उत्कृष्ट में उसको हम 20 कोड़ा कोड़ी और 15 कोड़ा कोड़ी देखा था, उसमें भी देखा था हास्य रति का कितना देखा था 10 देखा था, परंतु ये नाम कर्म की है या नौ कषाय वाली है तो उसका बीसीए में ही आती है। उसकी अपनी पर्सनल उत्कृष्ट स्थिति जुदी थी, परंतु जघन्य में तो दो सप्तमांश को ही लेना है उसको, दो सप्तमांश के बदले जुदा नहीं लेना है आपको क्वेश्चन। हिंदी में पढ़ते हैं स्त्री वेद नपुसक वेद हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सक। यानी यहाँ तक ये सब नौ कषाय में से केवल एक पुरुष वेद को जुदा लिया, बाकी आठ यहाँ लिए। तीर्य गति मनुष्य गति एक इंद्री जाति द्विंद्री जाति तीनरी जाति चतुरी जाति पंचेन्द्री जाति। पंचेन्द्री जाति श्रेणी में बांधती पर आठवें के छठे भाग तक बनती है, तो वहां अंत कोड़ा कोड़ी का बंद है और ये बिल्कुल दो सप्तमांश सागर में भी कुछ कम है। औदारिक शरीर तेजस शरीर कारमण शरीर छहो संस्थान औदारिक शरीर अंगोपांग छहो सहनन वर्ण गंध रस स्पर्श तिर्य गति प्राज्ञान पूर्वी मनुष्य गति गैया प्राज्ञान पूर्वी अगुरु लघु उपघात प्रघात उच्छ्वास आतप उद्योग प्रशस्त विहाय गति अप्रशस्त विहाय गति त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त प्रत्येक शरीर साधारण शरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर आदेय अनादेय अयशस्कीर्ति निर्माण और निज गोत्र। केवल यशस कीर्ति को छोड़ा है, उच्च गोत्र को छोड़ा है। और बाकी वो साता असाता को इसलिए छोड़ा है वो तीसरी वाली प्रकृति की, इसलिए पांच दर्शना पांच निद्राण उसको एक साथ वो तीसरी वाले में लिया था, उसको जुदा लिया था। इन प्रकृतियों का जघन्य से निबंध पल्यपम के असंख्यातवें भाग से कम सागरोपम के दो बटे सात भाग है, यानी दो सप्तमांश सागर माइनस पल्य का असंख्या। तो अब वो शंका कल देखिए। जावानी